नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं विनीता ठाकुर।
दोस्तों, ले आए हैं हम आज आपके लिए 1 से 15 जनवरी का अंक। दोस्तों, 2026 एक नया संकल्प और उसकी सिद्धि का लक्ष्य लेकर आया। अक्सर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाया करते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो भले देखने सुनने में बड़ा ना लगता हो, लेकिन वो हमारे अवचेतन मन में बड़े बदलाव ले आता है। ठीक उस तरह जैसे आजादी के आंदोलन के समय चरखा और एक मुट्ठी नमक जैसे छोटे प्रतीकात्मक प्रयासों ने सामाजिक एकता का ऐसा ताना बाना बुन दिया जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया और उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। ठीक उस तरह अब जब एक राष्ट्र के रूप में भारत खुद को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, तो गुलामी के प्रतीकों को मिटाना भी राष्ट्र का कर्तव्य बन जाता है।
इसी सोच को साकार करने के लिए नया भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली और नीतियों से गुलामी के प्रतीकों को मिटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज का नया भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, यही हमारी आवरण कथा बनी है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में विज्ञान जगत में अमूल्य योगदान देने वाले सत्येंद्रनाथ बोस, परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइट पेज पर यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दीपावली को अंकित किए जाने और बैक कवर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का स्वामी विवेकानंद को नमन समाहित है।
वंदे मातरम जिसने भारत को स्वावलंबन का रास्ता दिखाया, वंदे मातरम जिसने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी, वंदे मातरम जो विदेशी कंपनियों को चुनौती देने का मंत्र बन गया, वंदे मातरम जिसने उस विचार को पुनर्जीवित किया जो हजारों वर्षों से भारत की रग रग में बसा था। वंदे मातरम के 150 वर्ष ऐसे समय में पूरे हो रहे हैं जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से सामने हैं। इसी दौरान लोकतंत्र के मंदिर संसद ने वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की शुरुआत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है। वंदे मातरम पर विशेष चर्चा के संपादित अंश पत्रिका में शामिल किए गए हैं। महर्षि अरविंद ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है जो वंदे मातरम की महत्ता को बताता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर महिमा मंडन और गौरवगान से बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां इसके महत्व को समझेंगी। वंदे मातरम की रचना में बड़ी बारीकी से भारतवर्ष की मूल सभ्यता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा देश की माँ के रूप में कल्पना कर उसकी आराधना करने की परंपरा को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पुनर्स्थापित किया। इस राष्ट्रगीत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रसार हुआ और इसने बिना किसी प्रचार के हर व्यक्ति के मन को छुआ। वंदे मातरम एक प्रकार से भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों के पुनर्जागरण का मंत्र बन गया है।
जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुनः स्मरण करना हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास के अनगिनत घटनाओं को सामने लेकर आता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष गौरव पर्व के रूप में स्थापित करने का अवसर है। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, फिर से एक बार अवसर है, आओ हम सब देश को साथ लेकर चलें। आजादी का दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम के 150 वर्ष हम सब की प्रेरणा ऊर्जा बने, देश आत्मनिर्भर बने, 2047 में विकसित भारत बने। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी की तख्त पर चढ़ते थे, आखिरी सांस तक वंदे मातरम उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास, अनगिनत ऐसे हैं जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। जब वंदे मातरम की रचना हुई तब इसकी जरूरत जितनी थी आज भी उतनी है। उस समय वंदे मातरम देश को आजादी दिलाने का माध्यम बना, जबकि अमृत काल में वंदे मातरम देश को विकसित और महान बनाने का नारा बनेगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बताते हैं कि वंदे मातरम किस तरह विकसित भारत के संकल्प का आधार बन रहा है।
भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है। हम स्वदेशी आंदोलन को ताकत देना चाहते हैं। समय बदला होगा, रूप बदले होंगे, लेकिन पूज्य गांधी ने जो भाव व्यक्त किया था उस भाव की ताकत आज भी मौजूद है और वंदे मातरम हमें जोड़ता है। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का, देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का, आजाद भारत का सपने को सींचा था वंदे भारत की भावना है, वंदे मातरम की भावना ने समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा वंदे मातरम की भावना। उसी भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। 2047 में देश विकसित भारत बन के रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लिंक्डइन पोस्ट पर लिखे एक आलेख में प्राकृतिक खेती पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। इस आयोजन ने प्रधानमंत्री मोदी के मन पर गहरी छाप छोड़ी। अपने लिंक्डइन पोस्ट में इसी पर कुछ विचार बताए, साथ ही पूरे भारत के लोगों से प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2025 के अगस्त में तमिलनाडु के कुछ किसानों का एक समूह मुझसे मिलने आया और उन्होंने बताया कि कैसे वो स्थिरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कोयम्बटूर में नेचुरल फार्मिंग पर आयोजित होने वाले एक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वादा किया कि मैं कार्यक्रम के दौरान उनके बीच रहूंगा। इसलिए कुछ सप्ताह पहले मैं दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने खूबसूरत शहर कोयम्बटूर में था। एमएसएमई की रीढ़ माने जाने वाले इस शहर में प्राकृतिक खेती पर एक बड़ा आयोजन हो रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेचुरल फार्मिंग भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और आधुनिक पर्यावरणीय सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें फसलों की खेती बिना रासायनिक पदार्थों के की जाती है। ये विविध क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, जहाँ पेड़ पौधे और पशुधन एक साथ प्राकृतिक जैव विविधता को मजबूत करते हैं। प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री का आलेख पत्रिका में पढ़ा जा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश हित से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे बड़ा निर्णय वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए बजट आवंटन का है, जो देश में 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ये शहर और वार्ड स्तर पर प्राथमिक डेटा उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की जनगणना 2027 में देश की समस्त जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। ये 2 चरणों में की जाएगी। पहला गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 और दूसरा जनसंख्या गणना फरवरी 2027 तक। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जो बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा सुनिश्चित करेगा। इस राष्ट्रीय महत्व के विशाल कार्य को 30 लाख फील्ड कर्मचारी संपन्न करेंगे। इस दौरान 1.02 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा होगा। साथ ही मंत्रिमंडल ने कोल सेतु नीति और 2026 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। ये कोल सेतु विंडो लंबी अवधि और किसी भी औद्योगिक उपयोग एवं निर्यात के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी पर आधारित आबंटन का लक्ष्य रखती है। कोई भी घरेलू खरीदार जिसे कोयले की आवश्यकता है, वो लिंकेज नीलामी में भाग ले सकता है। 2026 सीजन के लिए खोपरा के एमएसपी को भी मंजूरी मिली। ये कदम किसानों की आय बढ़ाने और नारियल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
भारत आज दुनिया का छठा सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर बेड़ा संचालित करता है। कुल विद्युत उत्पादन में 3% से अधिक योगदान बना हुआ है। स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा क्षमता विस्तार के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित 200 मेगावाट के स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर और 55 मेगावाट के स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर के डिजाइन और विकास की शुरुआत हुई। भारत सरकार देश के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने के लिए स्वदेशी परमाणु तकनीक पर खास जोर दे रही है। अब देश में PHWR तकनीक के बड़े आकार जैसे 700 मेगावाट के रिएक्टरों के परिपक्व होने और स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टरों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्थापित 1000 मेगावाट रिएक्टरों की तैनाती से परमाणु क्षमता बढ़ रही है। साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने पर वर्ष 2031-32 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22.38 गीगावाट होने की उम्मीद जताई गई है। सरकार ने वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा भी की है। परमाणु ऊर्जा पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में पढ़ी जा सकती है।
दिव्यांगजन आज राष्ट्र की विकास धारा का न केवल हिस्सा बने हैं बल्कि देश दुनिया में तिरंगे का मान सम्मान भी बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बीते 11 वर्षों में दिव्यांगजनों को गरिमापूर्ण जीवन और अवसर देने के लिए सभी क्षेत्रों में सुगम्य इकोसिस्टम खड़ा किया है। इसी का परिणाम है कि दिव्यांगजन आज अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राष्ट्र की प्रेरणा बन रहे हैं। ऐसे ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए। पैरा एथलीट पूजा गर्ग इन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वो बताती हैं, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ और गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इस वर्ष मुझे बेस्ट दिव्यांगजन अवार्ड मिला है। 2010 में एक चोट से उन्हें गहरा आघात लगा था। जन्म से ही ऑर्थोग्राइपोसिस नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित सामाजिक कार्यकर्ता निपुण कुमार मल्होत्रा उत्कृष्टता श्रेणी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में 32 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। आज देश में ऐसी प्रेरणास्पद कहानियों की सूची लंबी होती जा रही है। ये परिणाम है उस सोच का जिसे दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किया था।
उन्होंने कहा था, मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की विस्तृत जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को पत्रिका के बैक कवर के रूप में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद ने स्व संस्कृति के प्रति न सिर्फ देशवासियों को जागरूक किया बल्कि विश्व को वेदांत और योग दर्शन से भी प्रभावित किया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा का पर्याय बना दिया।
युवाओं में चरित्र निर्माण एवं आत्मगौरव का बीज बोकर उन्हें राष्ट्रीय निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद का जीवन और दर्शन सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र का शत शत नमन।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।